हमने देखा कि अर्जुन शोकग्रस्त है, और भगवान ने शोक का कारण है ही नहीं इसको समझाने के लिए वो आत्मज्ञान से शुरू करते हैं। तो आत्मा की दृष्टि से शोक नहीं बनता। क्यों शोक नहीं बनता, क्या कारण है? क्योंकि आत्मा नित्य है। नित्यता को भगवान ने दर्शाया है कि आत्मा नित्य है, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं है। इसलिए अर्जुन तुम क्यों शोक करते हो, शोक का कारण नहीं है। एक लेवल नीचे बोले जीव की दृष्टि से, बोले जीव की दृष्टि से भी शोक नहीं बनता। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि जीव की यात्रा चलती रहती है, एक शरीर के बाद दूसरे शरीर में जाता रहता है, मरता तो नहीं है जीव, उसकी यात्रा चलती रहती है। इसलिए फिर भी जीव की दृष्टि से भी शोक नहीं बनता। थोड़ा सा और नीचे बोले शरीर की दृष्टि से क्या शोक बनता है? भगवान बोलते शरीर की दृष्टि से भी नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि व्यक्त अव्यक्त हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा है। पंच महाभूत से व्यक्त हुआ, फिर पंच महाभूत में चला गया, पंच महाभूत से व्यक्त हुआ, पंच महाभूत में चला गया। क्या हुआ? ये तो नेचर्स का लॉ है, उसमें भी शोक नहीं बनता है। आत्मा की दृष्टि से जीव शोक नहीं है, जीव की दृष्टि से भी शोक नहीं है, शरीर की दृष्टि से भी शोक नहीं है। अब बोलते हैं कि आपके सदाचार की दृष्टि से भी शोक नहीं है। आपको अपना आचरण करना चाहिए, आप श्रेष्ठ पुरुष हो, आपको देख के लोग वैसे ही आचरण करेंगे जैसा आप करोगे। उसके बाद बोलते हैं कि आपका जो धर्म है व्यवहारिक दृष्टि से भी, आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय धर्म, क्षत्रिय फैमिली के अंदर, परिवार के अंदर अगर आपने जन्म लिया है तो आपकी वासना क्षत्रिय धर्म की है, आपकी वासना के अनुसार ही आपने जन्म लिया। और जब क्षत्रिय के लिए क्या है, अगर कोई धर्म युद्ध मिल जाए तो उससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है? अब कोई डॉक्टरी पास करे और उसको डॉक्टरी का ही मिल जाए, उसके फील्ड का ही काम मिल जाए, तो वो तो सबसे बढ़िया है ना। अब डॉक्टर को अगर इंजीनियर का काम करना पड़े, डॉक्टर को मैनेजमेंट का काम करना पड़े, तो उसका फील्ड नहीं है। तो बोले तुमको ये धर्म युद्ध मिला है, इस दृष्टि से भी तुमको करना चाहिए। इतना बताने के बाद में भी भगवान ने कहा तस्मात तुमको युद्ध करना चाहिए, युद्ध करो तुम, मगर अर्जुन खड़ा नहीं हुआ। तो अब शंकराचार्य जी यहां पर कहते हैं कि ये आत्मज्ञान का उपसंहार हो रहा है, यहां आत्मज्ञान की चर्चा अब खत्म होने वाली है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं स्वधर्म अपि चावेच्छ, ये 31 नंबर श्लोक में ये वर्ड आया है, स्वधर्म आपके धर्म के अनुसार भी आपको युद्ध करना चाहिए, ये 31वें श्लोक में आया है। इत्यादि श्लोकों द्वारा शोक और मोह को दूर करने के लिए लौकिक न्याय बतलाया, भगवान को व्यवहारिक दृष्टि में आने की बात नहीं है, मगर फिर भी अर्जुन को समझाने के लिए लौकिक व्यवहार में भी आके बोले क्षत्रिय धर्म के अनुसार, क्षत्रिय धर्म के अनुसार आपको युद्ध करना चाहिए, इसमें शोक की कोई बात नहीं है। परंतु पारमार्थिक दृष्टि से यह बात नहीं है, परमार्थिक दृष्टि तो शोक बनता ही नहीं, आगे ही बता दिया है। यहां प्रकरण परमार्थ दर्शन का है, जो कि पहले श्लोक 30 तक कहा गया, परमार्थ दर्शन का हम लोग का श्लोक भगवान ने शुरू किए थे 11वें श्लोक से, तो 11वें श्लोक से लेके 30वें श्लोक तक आत्मा की दृष्टि, जीव की दृष्टि और शरीर की दृष्टि से भगवान ने परमार्थ की बात खत्म कर दी। उसके बाद व्यवहारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से 31वें श्लोक से उन्होंने बताया फिर भी तुमको युद्ध करना चाहिए क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। अब शास्त्र के विषय का विभाग दिखलाने के लिए ऐसा ते अभिता इस श्लोक से द्वारा परमार्थ दर्शन का उपसंहार करते हैं। अब जो श्लोक आ रहा है, जो 39 श्लोक से आज हम देखेंगे, यहां से शास्त्र का विभाग हो रहा है, सांख्य योग यहां खत्म हो रहा है, दूसरा वो कुछ बताने जा रहे हैं उसको योग कहेंगे, वो क्या है वो बताएंगे। तो भगवान यहां पर जो है इसको भाग करने जा रहे हैं और यही स्लिपरी पॉइंट है, यहां पर अर्जुन स्लिप कर गया और स्लिप करने के बाद में सेकंड चैप्टर के बाद में जो उसने प्रश्न किए थे वो 39वें श्लोक को ठीक नहीं समझने के कारण उसने किए, क्योंकि यहां शास्त्र के विषय का विभाग दिखलाया है, जाने से यह होगा कि आगे चलकर ज्ञान योग संख्यानाम कर्म योग योगिनाम इत्यादि जो दो निष्ठाओं को बताने वाला शास्त्र है वो सुख पूर्वक समझाया जा सकेगा और श्रोतागण भी विषय विभाग पूर्वक अनायास ही उसे ग्रहण कर सकेंगे, इसलिए कहते हैं। अर्जुन ने प्रश्न किया था तो वहां पर भगवान बताते हैं कि योगियों के लिए ये है और ज्ञान निष्ठा वालों के लिए ये मार्ग है, वो अलग अलग बताएंगे। तो अब पढ़ते हैं 39वां श्लोक।
एषा ते विहिता सांख्ये,
एषा ते विहिता सांख्ये,
बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु,
बुद्धियोगे त्विमां शृणु,
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ,
बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ,
कर्म बंधं प्रहास्यसि,
कर्म बंधं प्रहास्यसि, एषा ते अभिता सांख्ये,
बुद्धियोगे त्विमां शृणु, बुद्ध्यायुक्तो यया पार्थ, कर्म बंधं प्रहास्यसि।
एषा ते, ते मीन्स यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं तुभ्यम अर्जुन तुमको, एषा ते अभिहिता, अभिहिता में तो उक्ता, मैंने कहा, मैंने तुमको अर्जुन अभी तक कहा, क्या कहा, सांख्य बुद्धि, मैंने तुमको अभी सांख्य बुद्धि के बारे में बताया। अब योग त्विमां शृणु, अब बुद्धि योग के बारे में सुनो। देखो ये जो बुद्धि वर्ड है ना, सांख और योग के बीच में है, तो ये बुद्धि सांख बुद्धि भी होगी और योग बुद्धि में भी जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं देहली दीपक न्याय, जो होता है ना थ्रेशोल्ड, देहरी जिसको बोलते हैं, कमरे के भीतर और कमरे के बाहर। आजकल यहां पर तो नहीं होता है, इंडिया में भी आजकल नहीं होता है, मगर पहले एक चौखट सी होती थी जिसको दहलीज कहते थे, तो उस दहलीज के ऊपर में अगर एक दीपक रख दो तो क्या करता है वो दीपक, बाहर भी रोशनी देता है भीतर भी देता है, तो दोनों तरफ रोशनी देता है। इसी तरह ये बुद्धि वर्ड जो है वो सांख्य बुद्धि के साथ भी जाएगा और योग बुद्धि के भी साथ जाएगा। सांख्य बुद्धि क्या है, योग बुद्धि क्या है, अब देखेंगे अभी। तिमाम सुनो श्रीनु, ये वर्ड पहली बार गीता में अभी आया है। श्रीनु भगवान ने श्रीनु वर्ड यूज नहीं किया था जब आत्मज्ञान दे रहे थे। मैंने पहले ही कहा यह पहली बार वर्ड आ रहा है श्रीनु। आत्मज्ञान देने के टाइम में अर्जुन को भगवान ने नहीं कहा श्रीनु, सीधा ही आत्मज्ञान शुरू कर दिया। मगर यहां कहते हैं कि आप ध्यान से इसको सुनो, इमाम श्रीनु बुद्धा युक्तो यया पार्थ, ऐसी बुद्धि प्राप्त करने के बाद में पार्थ हे अर्जुन क्या होगा, कर्म बंधन प्रहास्यसी, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तब बुद्धि दो किस्म की है, बुद्धि मतलब समझ, अंडरस्टैंडिंग, विजन, दो किस्म की है, एक है सांख्य बुद्धि और दूसरी है योग बुद्धि। सांख्य बुद्धि क्या है, तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं परमार्थ वस्तु विवेक विषय बुद्धि ज्ञानम साक्षात शोक मोह आदि संसार हेतु दोष निवृत्त कारणम। सांख्य बुद्धि वो बुद्धि है, वो अंडरस्टैंडिंग है, वो विजन है जिसके आपको परमार्थ वस्तु का विवेक होता है। परमार्थ वस्तु तत्व का विवेक होता है, तत्व के विषय में आप जान पाते हैं। और ये कहां बताया भगवान ने, 11वें से लेके 30वें श्लोक, ये बराबर याद रखना। सांख्य योग महा मतलब आत्म तत्व का ज्ञान, भगवान 11वें से लेके 30-20 श्लोक के अंदर में ज्ञान खत्म। तो वहां पर परमात्म वस्तु विषय के बुद्धि के ज्ञान बताया, इससे क्या होता है, बोले साक्षात डायरेक्ट, ये डायरेक्ट कारण है किस चीज का, शोक मोह आदि संसार हेतु दोष निवृत्ति कारणम। इससे आपका जो है जो शोक और मोह हो रहा है, जो आपके संसार का हेतु है, जो कारण है, वो जाएगा। देखो बार बार शंकराचार्य जी आपको घुमा फिरा के लाते हैं कि अगर आपको शोक और मोह है तो किससे जाएगा, केवल आत्मज्ञान से जाएगा, दूसरे किसी तरीके से नहीं जाएगा। आप हजार चेष्टा कर लो, बाहर की परिस्थिति बदलते रहो, कुछ नहीं होगा। जो व्यवस्था करनी है कर लो, संसार का सुख और दुख केवल उसकी निवृत्ति आत्मज्ञान से होगी। तो सांख्य वर्ड आया कहां से, ये वर्ड आता है संख्या से। संख्या से आपने सुनी है ना, संख्या कहते हैं नंबर्स, 1, 2, 3, 4 संख्या। संख्या का मतलब क्या होता है, समख्या, 100 के ऊपर एक चंद्र बिंदु है ना, उसको तोड़ दो, समख्या। ख्या मैंने कहना, सम मतलब ठीक से कहना। अगर आपने किसी वस्तु को ठीक से कह दिया तो उसको हम संख्या कहते हैं। सम्यक ख्यायते अन्यायति संख्या, ये उसकी परिभाषा है संख्या की। सम्यक ख्यायते, ठीक से बता दिया आपको, वो संख्या है। तो आत्मज्ञान के बारे में भी भगवान ने ठीक ठीक बता दिया, 11वें से लेकर 30वें श्लोक तक ठीक ठीक से बता दिया, तो वो भी संख्या है। ठीक से बताना ही तो संख्या है, तो भी ठीक बताया। तो सम्यक्ख्यायते अन्या आत्मज्ञानम इति संख्या, जिससे आत्मज्ञान बताया जाता है वो संख्या है। और किससे बताया जाता है, ब्रह्म ज्ञान से और उपनिषद से बताया जाता है। आत्मज्ञान कहाँ है, आत्मज्ञान उपनिषद में है, उसी को ब्रह्म ज्ञान भी कहते हैं। तो वहां पर ठीक ठीक से आत्मज्ञान बताया गया। भगवान ने भी 11 से लेकर 30वें श्लोक तक आत्मज्ञान की चर्चा ठीक ठीक सम्यक्ख्यायते ठीक से बता दिया है। अच्छा, जो उपनिषद से जाना जाता है वह सांख्य है। देखो संख्या से सांख्य में कैसे आ गए, जो चीज ब्रह्म ज्ञान से उपनिषद से जानी जाती है उसको हम सांख्य कहेंगे, संख्या नहीं कहेंगे। संख्या किसको कहते हैं, ठीक ठीक जानना को संख्या कहते हैं। तो आत्मा के बारे में हम ठीक ठीक कहां से जानेंगे, उपनिषद से जानेंगे, गीता से जानेंगे, ब्रह्म ज्ञान से जानेंगे, पता लगेगा। तो उपनिषद भगवत गीता से जो जाना जाता है उसको सांख्य कहते हैं। क्या जाना जाता है? आत्मा जाना जाता है, इसलिए उसको सांख्य कहते हैं। आत्मा क्या है? सांख्य है। आत्मा के बारे में क्योंकि चैप्टर 2 में बताया गया, इसलिए इस चैप्टर का नाम हो गया। क्यों सांख्य हुआ? ये कैसे आया? संख्या क्या है? बहुत बढ़िया। अब कहते हैं एक सांख्य दर्शन होता है, वो मगर अलग है। सांख्य दर्शन में क्या है? उसमें ठीक से गिनती करते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। सांख्य दर्शन वाले बोलते हैं कि इस संसार के अंदर 24 तत्व हैं। अच्छा, क्या क्या है भाई, बताएंगे कोई? 24 तत्व हैं, पंच महाभूत, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, कितने हो गए? 4 अंतःकरण, 24। तो ये सांख्य दर्शन का है, वो गिन के बता देंगे पट 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 24। अच्छा, आप अगर आरएसएस में जाओ, जब वो लोग ड्रिल करते हैं ना, तो जब ड्रिल करते हैं तो बोलते हैं संख्या कितनी है आज, तो पता है कैसे वो लोग संख्या गिनते हैं? मान लो 3 रो में खड़े हैं आदमी लोग, व्यायाम वगैरह करते हैं, संख्या तो ये करेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फर्स्ट लाइन का 8, दूसरा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तीसरा 1 to 10 गया। अब ये 8, 9, 10, 27, ये इतना फास्ट होता है, टोटल 27। अब कोई खड़ा होकर ऐसे नहीं गिनता है, वो ही अपने आप कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दूसरी रो वाला 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, तीसरी रो वाला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8+9+10, 27, इतनी संख्या प्रेजेंट है। हम लोग ज्ञान यज्ञ में भी संख्या गिनते हैं। अभी डेलस में हम लोग का ज्ञान यज्ञ हुआ, महासमाधि कैंप, कितनी संख्या? बोले 1200 की संख्या, बहुत अच्छा। अब योग बुद्धि सुनो, योग आता है युद्ध धासु से, कैसे हम जुड़े उसको हम योग कहते हैं। तो यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं योगे तु तत् प्राप्ति उपाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, तत् प्राप्ति उपाय। योग क्या है? उसको पाने का उपाय है। किसको पाने का? योग जो है, योग बुद्धि है, तत् प्राप्ति उपाय, उसको पाने का उपाय है। कैसे उसको पाए? बोले निसंगतया द्वंद प्रहान पूर्वकम ईश्वर आराधनार्थम कर्म योगे कर्मानुष्ठाने समाधि योगे। बोले ऐसे आपको समझना है, कैसे प्राप्ति होगी उसका? तो कहते हैं निसंगतया, आपको जो है पहले निसंग होना है। निसंग अच्छा, देखो छोड़ने को नहीं कहा, केवल निसंग होने को कहा है। आप अपने स्पाउस से निसंग हो जाओ, इसका यह मतलब थोड़ी ना कि आप डाइवोर्स कर दो, ऐसा नहीं कहा। आप अपने जो है घर से निसंग हो जाओ, इसका यह मतलब नहीं कि छोड़कर आप हिमालय चले जाओ, ऐसा नहीं कहा। घर में रहो मगर निसंग रहो, निसंगतया। द्वंद प्रहान पूर्वकम, इंपॉर्टेंट वर्ड है पूर्वकम। द्वंद प्रहान, द्वंद को अगर त्याग करना है, आगे एक जगह आया था ना कि हमको हर द्वंद के अंदर सम रहना चाहिए। समता कैसे बनेगी? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था, समता कार्य शुरू करने के पहले की बुद्धि है। आप काम करने के समय या कर्म फल पाने के समय समता नहीं ला सकते। समता की बुद्धि आपको काम करने के पहले करनी है, इसलिए यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं द्वंद प्रहान पूर्वकम। कर्म करने के पहले आपको यह बुद्धि बनानी है कि यह सम, और वो सम बुद्धि कब बनेगी? वो संबुद्धि तभी बनेगी जब आप कोई भी कर्म किसी ऊंचे पद के लिए करते हो, हायर आइडियल के लिए करते हो, तभी वो समता आएगी। मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, हम सम है। आप कंपनी में काम करते हैं, किसके लिए करते हैं? कंपनी के लिए करते हैं, हम सम है। लाभ होगा, नुकसान होगा, आपको कोई कहता है कुछ? आपको कुछ नहीं कहता, आप सम हो। तो अपना अगर हम अपनी ड्यूटी भी अगर कर्तव्य कर्म इस तरह से करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं, तो हम सम रह पाएंगे। बहुत अच्छा। तो ये इसके उपाय क्या क्या हैं? बोले उपाय देखो, आप लोग प्राणायाम करते हो, पूजा करते हो, जप करते हो, तप करते हो, बोले सभी उपाय हैं, सबसे आपको फायदा मिलेगा, सभी उसको आपको सहायता करते हैं वो सांख्य योग तक जाने के लिए। तो सांख्य योग को पाने के लिए योग बुद्धि माने कर्म योग उपाय है। ईश्वर आराधना अर्थ कर्म कैसा होना चाहिए, हमारी ड्यूटी कैसे होनी चाहिए, किस भाव से होनी चाहिए, ईश्वर आराधना अर्थ। देखो इसमें से एक वर्ड हम नहीं छोड़ सकते, आपको इसको पकड़ लेना होगा। ड्यूटी आपको कर्तव्य कर्म करनी पड़ेगी, आप बिना कर्म के एक सेकंड नहीं रह सकते। ये तीसरे अध्याय में भगवान बोलेंगे हम कैसे ड्यूटी करें ताकि हमारा कर्म बंधन ना हो। इसीलिए उन्होंने कहा कि कर्म बंधन प्रहास्यसि, अगर जैसे मैं तुमको बता रहा हूं वैसे अगर करोगे तो कर्म बंधन नहीं होगा। तो कैसे करना है? निसंगतया नंबर वन, नंबर टू द्वंद प्रहान पूर्वकम, समता के साथ करना है, हम सम रहेंगे। हमने आपसे बताया था भगवान आप पास होंगे कि फेल होंगे, आप हारेंगे कि विजयी होंगे, उससे उनको मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनसे। भगवान को केवल ये मतलब है कि आपका भाव क्या था। भगवान आपका भाव लेंगे। आपने भगवान को स्मरण करके कर्म किया, कर्तव्य कर्म किया, आप सक्सेसफुल हुए या नहीं हुए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भगवान उसमें से केवल आपका भाव लेने वाले हैं, आपने भगवान को याद किया कि नहीं किया। और यही हमारे जीवन में मिसिंग है। काम हम सब करते हैं, अपना सब कर्तव्य कर्म करते हैं, मगर भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते हैं। इसलिए यहां का ईश्वर आराधनार्थे, ईश्वर की आराधना के हिसाब से आप अपना कर्म करो। आप एक चीज ख्याल करेंगे, भगवान ने कोई नया कर्म नहीं बताया। सारी गीता के अंदर आपको कोई नया कर्म नहीं मिलेगा। भगवान आपको बार बार कहेंगे कि आपका जो कर्म है, आपका जो स्वधर्म है, आपकी वासना के अनुसार आप जो कर्म कर रहे हो, आपका जो कर्तव्य कर्म आपके वर्ण और आश्रम के अनुसार है। वर्णन आश्रम, आश्रम हाँ, क्या क्या? ब्रह्मचर्य और वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय। ये कैसे बनते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय? सत्व रजस तमस गुण के हिसाब से बनते हैं। ब्राह्मण परिवार में पैदा होने से ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण में परिवार में पैदा हुआ शूद्र भी होता है, शूद्र के परिवार में पैदा हुआ ब्राह्मण भी होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन सत्व रजस तमो गुण, उसके कॉम्बिनेशन के हिसाब से ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र होते हैं। तो आप अपना कर्म करो, मगर वो कर्म कैसा होगा? समतापूर्वक, एक दूसरा ईश्वर आराधना, और तीसरा निसंगतया। तो ऐसे अगर कर्म करोगे तो योग होगा। आप जो है भगवान जो है केवल आपसे प्रेम ले रहे हैं, आप भक्ति पूर्वक जो कर रहे हो भगवान केवल उसमें से भक्ति ले रहे हैं। और अगर आप बराबर भक्ति 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 करते जाओगे तो क्या होगा? आपका मन शुद्ध होगा। अभी मन क्या है? अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि कर्तव्य कर्म के अंदर भगवान नहीं है। क्या है? खाली दुनिया है, ऑब्जेक्ट, इमोशंस एंड थॉट है, और कुछ भी नहीं है। तो किसका इंप्रेशन पड़ेगा? दुनिया का पड़ेगा ना। और अगर भगवान को बीच में ले आए तो बताओ कौन सा शुद्ध इंप्रेशन है? भगवान का इंप्रेशन शुद्ध होगा। तो ऐसे अगर आप करते जाएंगे तो आस्ते 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 आपकी वासना का क्षय होगा। देखो, ये शुद्ध करने में समय ज्यादा लगेगा। हमने कई बार आपको बताया कि मन शुद्ध करने का प्रोसेस लंबा है, कई जीवन भी लग सकते हैं उसमें, मगर करना होगा। चाहे आप इस जीवन में करो, और यू वेट फॉर अनदर बर्थ, ह्यूमन बर्थ, दूसरा बर्थ काम नहीं होगा। अगेन यू वेट फॉर द अनदर ह्यूमन फॉर्म। जब भी करो, करना आपको होगा। अच्छा, तो कर्म योग से बंधन नहीं होता। तो यहां भगवान कर्म योग की प्रशंसा कर रहे हैं। बंधन कैसे होता है हमारा? जब हम भगवान के लिए कर्म नहीं करते हैं, अपने लिए करते हैं, अपनी खुशी के लिए करते हैं, हमको ये कर्म फल मिल जाए तो मैं आनंदित हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। और हम होते भी हैं, कई बार हम आनंदित होते हैं। जब जब आनंदित होते हैं, जिस जिस चीज से आनंदित होते हैं, उस चीज को हम फिर से करना चाहते हैं, ताकि मैं फिर से आनंदित हो जाऊं। और ये हम करते जाएंगे, कंटिन्यूअसली करते जाएंगे, यही बंधन है। चाहे आप पाप कर्म करो, वो भी बंधन है। पुण्य कर्म करो, वो भी बंधन है। क्यों? पुण्य कर्म का भी कर्म फल लेना पड़ेगा। पुण्य कर्म का कर्म फल क्या है? सुख है, स्वर्ग मिल सकता है, तो स्वर्ग में जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो हमें तो ऐसा करना है कि बंधन ना हो। तो कैसे होगा? बोले ईश्वर आराधना की तरह करो, समता के हिसाब से करो, और निसंगतया करो। अगर हम कर्मयोग जैसे बताया वैसे करें ना, भगवान को अगर जीवन में ले आए, देखो ये कर्म आपका समाधि बन जाएगा। कर्म समाधि बन जाएगा। परसों हम लोग के मुख्य स्वामी जी बता रहे थे ना, देखो आप लोग सुन रहे हो, ये समाधि, यही समाधि है, दूसरा कुछ नहीं है। आप लोग समाधि में हो, काली बोल रहे थे, ये समाधि है। तो ठीक उसी तरह से अगर भगवान को अगर उसके अंदर भक्ति में रख के इस भावना से अगर हम कर्म करें, तो वो कर्म भी आपका मेडिटेशन है, वही ध्यान है, वही समाधि है, अलग कुछ नहीं करना है। अब भगवान, पहले आपको आत्मज्ञान के बारे में कहा, अब भगवान कर्मयोग के बारे में कहने जा रहे हैं। देखो, भगवान को अगर अपने जीवन में लाएंगे ना, तो क्या होगा? ठाकुर रामकृष्ण के एग्जाम्पल बड़े सिंपल होते हैं, बड़े अच्छे होते हैं। तो कहते हैं कि जब आप गृहस्थ आश्रम में हो, तब एक हाथ से भगवान को पकड़ो, दूसरे हाथ से संसार का काम करो। आप करते हो? गृहस्थ आश्रम में आप दोनों हाथों से संसार का काम करते हो। ठाकुर रामकृष्ण कहते हैं कि जब गृहस्थ आश्रम खत्म हो जाए, उसके बाद क्या करो? एक हाथ से पकड़ो, दोनों हाथ से पकड़ो भगवान को। हम रिटायर करने के बाद भी दोनों हाथ से संसार को पकड़ते हैं, फिर भी नहीं भगवान को पकड़ते। एक हाथ से पकड़ने का मतलब आप अपने कर्तव्य कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। ऐसा करके करोगे तो आप एक हाथ से भगवान को पकड़ रहे हो। आपके जीवन में भगवान आना चाहिए, कैसे आए ये आप सोचो। बहुत बढ़िया। अच्छा, कर्म क्या है? क्यों हमको कर्म बांधता है? तो जहां पर कर्तृत्व है, डुअरशिप है, और फल की आकांक्षा है, वो कर्म है। जहाँ पर डूअरशिप है, मैं करने वाला हूँ, मुझे ये चाहिए, वो कर्म आपको बांधेगा। वो कर्म अच्छा भी हो सकता है, बुरा कर्म भी हो सकता है, और दोनों ही आपको बांधेंगे। अच्छा कर्म आपको अच्छा फल देगा, सुख देगा, बुरा कर्म बुरा फल देगा, आपको दुख देगा, और ये कर्म बंधन चलता रहेगा। यही कर्म बंधन है, कंटिन्यूअसली ये चलता रहेगा। अगर कर्तृत्व कम करना चाहते हैं या उसको हटाना चाहते हैं, तो हम कर्ता नहीं है, हम क्या हैं? हम भगवान के हाथ में एक यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट हैं। कर्ता कौन है? हम भगवान को मानते हैं, चलो भगवान करता है। हालांकि कर्ता प्रकृति है। हम भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर कर्म करते जाएंगे तो उससे हमारा मन शुद्ध होगा। मन शुद्ध होगा तब आपके भीतर जिज्ञासा उठेगी कि मैं कौन हूं, क्या सारा जीवन यही कोलू की बैल की तरह गृहस्थी में घूमते ही रहें, क्या इसी के लिए जीवन है? तब आपके मन में आएगा, इतनी जिंदगी खटते रहे खटते रहे खटते रहे, 50 साल 60 साल पीछे घूम के देखा, इधर देखा, बैंक बैलेंस इतना था, जीरो था, अभी इतना हो गया, फिर क्या हुआ? बस इतना ही हुआ ना। आप जीवन का बैलेंस शीट आप निकाल के देखो, आपको पता लग जाएगा क्या हुआ 50 60 साल में, क्या लिया, क्या मिला। ठीक है, अब वो भगवान कहते हैं, देखो यहां पर भगवान जो है ना, इज ए वेरी गुड सेल्स पर्सन। वो कहते हैं देखो, अगर कर्म योग करोगे ना, कर्म बंधन प्रहास्यसी, बंधन से मुक्त हो जाओगे। और क्या चाहिए कर्म बंधन में? पते हो, जैसे गाड़ी का एडवर्टीजमेंट होता है ना, गाड़ी का एडवर्टीजमेंट करते तो क्या देते हैं, गाड़ी के डिफरेंट एंगल से फोटो आपको दिखाते हैं, इधर से ऐसा है, उधर से वैसा है, कलर दिखाते हैं, फिर भीतर की सीट के बारे में बोलेंगे आपको, ये लेदर है, हालांकि लेदर नहीं होती है, सब प्लास्टिक ही है सब, ये लेदर है। फिर बोलेंगे पीछे सीट के अंदर वो मैसेज का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, एडजस्टेबल है, ऑटोमेटिक है, दिस दैट, दुनिया भर की चीजें बताएंगे, ग्राउंड क्लियरेंस कितना है, फिर बताएंगे पावरफुल इंजन है, लो मेंटेनेंस है, हाई माइलेज है, ये सब कुछ बताएंगे आपको। क्यों? एडवर्टीजमेंट है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना है, भगवान को भी बेचना है अपना प्रोडक्ट। तो भगवान को भी अपनी प्रशंसा करनी है ना कर्मयोग की, कि कर्मयोग करोगे तो क्या मिलने वाला है। कल आपने सुना भी था हम लोग के स्वामी जी ने से, कि सूर्य क्या कर रहा है? कर्मयोग कर रहा है। फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द क्रिएशन सूर्य कर्मयोग करता आ रहा है। तो इस तरह से जब हम करते जाएंगे तो हमारा मन साफ होगा, मन साफ होगा तो हम सांख्य योग के लिए उपयुक्त होंगे। आप कभी ये मत समझ लेना कि कर्म योग से मैं पहुंच जाऊंगा वहां, नहीं, कभी नहीं पहुंच सकते आप। कर्म योग से आप एक लेवल तक पहुंचोगे, मन शुद्ध होगा, मन शुद्ध के बाद में ज्ञान चाहिए। इसलिए कर्मयोग क्या है? ज्ञान प्राप्ति का उपाय है। यहां पर अर्जुन स्लिप कर गया, वहां पर भगवान को जाके उसने प्रश्न कर दिया कि अगर कर्मयोग से भी हम वहां पहुंच सकते हैं, ज्ञान योग से भी पहुंच सकते हैं, तो मेरे को युद्ध करने के लिए क्यों कहते हो? तो आप भी गलत नहीं समझना। क्या समझा आपने? कर्म योग ज्ञान योग का उपाय है। जिसके पास वासनाएं हैं उसको कर्म योग करना होगा। आप सीधा ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी, समझ लिया ठीक से आपने? शुरू करोगे कि नहीं करोगे आपकी इच्छा है। भगवान आगे कहने वाले हैं, कर्म में आपका अधिकार है, मैं नहीं बोलने आने वाला ऐसा करो, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो कर्म योग का रिजल्ट जो है काम्य कर्म से बहुत ज्यादा अच्छा है। अच्छा है तो भगवान अभी उसकी प्रशंसा करेंगे ना, कैसे अच्छा है बताएंगे, कर्म योग करने से क्या लाभ है, काम्य कर्म में क्या दोष है, सब आएगा देखते हैं।
नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते,
प्रत्यवायो न विद्यते,
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य,
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य,
त्रायते महतो भयात्,
त्रायते महतो भयात्,
नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य, त्रायते महतो भयात्।
न इह अभिक्रम नाश अस्ति, न इह, शंकराचार्य जी कहते हैं ना ये का मतलब मोक्ष मार्गे कर्म योगे, जो आदमी कर्म योग कर रहा है वो कहां पहुंचना चाहता है, मोक्ष मार्ग में, ज्ञान मार्ग में पहुंचना चाहता है, और जो ऐसा शुरू करता है प्रारंभ करता है, अभिक्रम नाश मतलब प्रारंभ, अभिक्रम प्रारंभ जो करता है, प्रारंभ किया उसका नाश नहीं होता, क्या मतलब है हम देखेंगे अभी, प्रारंभ करने से उसका नाश नहीं होता। काम्य कर्म उसके अंदर बहुत असुविधाएं हैं हम देखेंगे। न प्रत्यवायो विद्यते, उसका कोई हानिकारक रिजल्ट भी नहीं आता है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यहां पर डॉक्टर लोग दवाई देते हैं ना, ये एंटीबायोटिक खाओ मगर ये साइड इफेक्ट है, सारा जीवन पर प्रेशर खाओगे तो ये साइड इफेक्ट आने वाला है, 20 साल के बाद आएगा इतना साइड इफेक्ट है, बोले इसका कोई हानिकारक नहीं है, कुछ नहीं है, नो साइड इफेक्ट। स्वल्पम अपि धर्मस्य, यहां धर्मस्य मतलब कर्मयोग, स्वल्प थोड़ा सा भी अगर कर दो फल क्या है, त्रायते महतो भयात, महतो भयात। यहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं महतो भयात मीन्स संसार भयात जन्म आदि, जन्म मरण आदि लक्षणात्, थोड़ा सा भी करोगे तो जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। देखो स्वल्प से थोड़ा सा करने से भी लाभ कितना है, बहुत महत्व, संसार के भय जन्म मरण से बच जाओगे। अभिक्रम नाश नास्ति, अभिक्रम देखो अभिक्रम क्या होता है, प्रत्येक जो है कार्य के अंदर क्रम होता है, एक स्टार्टिंग है फिर मिडिल है फिर उसका अंत है, आप एक ऐसे लिखते हो ना, पहले स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन फिर मेन में उसको भी लिखते हो फिर कंक्लूजन लिखते हो, तो ऐसे क्रम एक होता है। एग्जाम्पल देखो तो पता लगेगा, जैसे आप प्रेस करके कपड़े पहन के ऑफिस जाते हो तो उसका क्रम क्या है, पहले कपड़े धो फिर उसको सुखाओ फिर उसको प्रेस करो, ये क्रम है ना। अच्छा हम पहले कहें कि नहीं पहले प्रेस कर लेते हैं फिर उसको सुखाते हैं फिर उसको धोते हैं, मिलेगा फल नहीं, हुआ क्रम है उसके अंदर। मगर कर्म योग में बताएंगे कैसे क्रम नहीं है, कोई नाश नहीं होगा। अच्छा पूजा के अंदर भी देखो आपका स्टेप होता है ना, आवाहनम है उसके बाद बुला के हम आसन देते हैं भगवान को, उसके बाद में उनको पाद्यम पांव धुलाते हैं फिर हाथ धुलाते हैं फिर आत्मनियम करते हैं फिर उनको स्नान कराते हैं फिर वस्त्र देते हैं वो भी तम देते हैं, एक नियम है इस हिसाब से उस क्रम से करते हैं, फिर लास्ट में आरती करते हैं। आप बोलोगे नहीं पहले आरती करेंगे उसके बाद में हम उनको आवाहन करेंगे, अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, क्रम है। यहां पर शंकराचार्य जी बोलते हैं यथा कृषि आदे, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कृषि का, एग्रीकल्चर का, तो उसमें भी क्रम है ना, एक सीक्वेंस है, फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द सॉयल, बनाओ उसके बाद में उसमें बीज डालो, इरिगेशन करो, फर्टिलाइजर दो, वीड्स निकालो, क्रॉप आएगा उसको काटो, ड्राई करो, थ्रैश करो, बैग बनाओ, मार्केट ले जाओ, तब पैसा मिलेगा। एक भी उसके अंदर सीक्वेंस अगर कम कर दें तो आपको नहीं मिलेगा। हर काम्य कर्म में ये सीक्वेंस है, जब तक आप काम्य कर्म कंप्लीट नहीं करोगे आपको फल नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो हमारे श्राइन के अंदर बहुत बड़ा हॉल है, उसको अगर हमने वैक्यूम करना है और किसी आदमी को हायर किया, वो आया, उसने कहा 2 घंटे लगेंगे वैक्यूम करने में, उसने 5 मिनट किया, करने के बाद उसके घर से फोन आ गया कुछ असुविधा हो गई, वो तम नहीं करेगा हम जाते हैं, आप उसको पैसे दोगे? नहीं दोगे। काम पूरा नहीं हुआ, पैसे नहीं मिलेंगे। मगर कोई अगर कर्म योग के हिसाब से करे, 1 मिनट भी करेगा तो उसने भगवान को याद किया है, उस भगवान को 1 मिनट याद करने का उसको फल मिलेगा। देखो ये फर्क है, काम कर्म के अंदर जब तक आपने पूरा काम नहीं किया तब तक आपको फल, मगर कर्म योग थोड़ा सा किया, पूरा नहीं किया, सीक्वेंस में भी नहीं किया, तभी फल आएगा। हम एग्जाम्पल आपको देंगे, बताएंगे। तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि आप कर्म योग करने जाओगे तो उसके अंदर उल्टा पुल्टा करोगे, ऐसा मत करना। वही कपड़ा धो के हमको सुखाना है, प्रेस करना है, तो अब भगवान आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं इसलिए पहले प्रेस करते हैं गंदे कपड़े, उसके बाद सुखाते हैं फिर धोएंगे। नहीं नहीं नहीं, इसका ये मतलब नहीं होता है। देखो सबरी ने जो है, भगवान जब राम आए थे तो क्या किया था, पहले आरती उतारी, फिर उनको बिठाया, फिर अपने जूठे फल खिलाए उसको, क्रम नहीं था, मगर भगवान खुश हुए क्योंकि उसके अंदर भक्ति थी। भगवान ने केवल भक्ति लेनी है और कुछ नहीं लेना है। बढ़िया। प्रत्यवायन विद्यते, कर्मयोग में कोई उल्टा फल नहीं होता है, कोई उल्टा फल नहीं है। आप 5 मिनट श्राइन में हमारी वैक्यूम करके चले जाओ, उसके बाद नहीं करो, वी आर नॉट गोइंग टू फाइल ए सूट अगेंस्ट यू, क्यों नहीं पूरा किया, ऐसा नहीं कहेंगे हम। कोई उल्टा फल नहीं है। देखो कर्म कांड के अंदर उल्टा फल होता है। जब भी आप जो है रिचुअल्स कोई करते हो, वो अगर ठीक से नहीं हुआ तो उल्टा फल होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर जब आप यज्ञ कोई कर रहे हो तो पुरोहित का बायां घुटना जमीन को टच करना चाहिए, अगर नहीं करता है उल्टा फल होगा। हर आहुति के बाद में एक अवशिष्ट आहुति एक निर्दिष्ट प्लेट के अंदर लेनी पड़ती है, वो अगर नहीं करो उसको दूसरी जगह डाल दो, वो दोष है, उसका उल्टा फल आएगा। आप मंत्र उच्चारण के अंदर में अगर गलती कर दो उल्टा फल हो जाएगा। हम लोग के दिवाली के अंदर हम लोग मंत्र पढ़ते हैं ना, पूजा करते हैं, अलक्ष्मी चली जा, लक्ष्मी आओ, ऐसा कहते हैं, मगर आप कहीं वो मंत्र के अंदर उसके अंदर और जो है अवग्रह है, आपको संस्कृत में समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा, उसमें ओ की जगह अवग्रह ऐसे एक चिन्ह होता है, उसके बाद लक्ष्मी लिखा हुआ है। अगर आपको ये पता नहीं है कि अवग्रह का मतलब ओ होता है, अलक्ष्मी यू गो अवे, लक्ष्मी यू कम इन, तो आप क्या बोलोगे, लक्ष्मी गो अवे, बोलेंगे तुम बोल रहे हो जाने को, तुम चले जाते हैं, फल उल्टा हो गया ना। आपने पूजा की लक्ष्मी को आने के लिए कहा और अलक्ष्मी को जाने के लिए कहा, मंत्र उल्टा पढ़ दिया, उल्टा फल हो जाएगा। दवाइयां भी, अब प्रेमल भाई एंटीबायोटिक दें, आप ठीक से नहीं खाओ, बोले ऐसे ऐसे खाना चाहिए, इतनी बार खाना, इतने दिन करना, इतना जरूर खाना, आपको आराम मिल गया 2 दिन के अंदर, उन्होंने कहा 10 दिन खाना। मैंने बोला अरे प्रेमल जी को क्या पता, 2 दिन में ही आराम हो गया अपना, छोड़ दो बंद कर दो तो उससे क्या होगा, बैक्टीरिया इम्यून हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम जब प्रेमल भाई देंगे तो काम नहीं करेगा, फिर इम्यून हो गया, उल्टा फल हो जाएगा। तो जो भी दवाई आपको देंगे जिस हिसाब से कहा गया है वैसा आपको करना है। देखो ये कर्म कांड जो है युद्ध के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये हमारी अपनी ड्यूटी के लिए कहा जा रहा है, हमारे जो कर्तव्य कर्म है उसके अंदर हमको ये उपयोग करना है। तो अगर हम ऐसा करें कर्म योग के हिसाब से, कर्म योग के क्या तीन चीजें हमने देखी, ईश्वर अर्पण, तीसरा समता। इस तरीके से अगर हम करेंगे तो हमको अभिक्रम का नाश नहीं, प्रारंभ किया खत्म नहीं कर पाए उसकी चिंता नहीं है, जितना किया उसका फल मिल, क्यों मिलेगा, क्यों मिलेगा, भगवान को याद करके किया, भगवान को याद किया तो भगवान को तो फल देना होगा, तो उसका फल मिलेगा। और उसका प्रत्यवाय न विद्यते, प्रत्यवाय मतलब कोई उल्टा रिजल्ट नहीं है, कोई उल्टा फल नहीं है, कोई कुफल नहीं है, थोड़ा सा करने से भी लाभ, कोई उल्टा फल भी नहीं है। अब फिर वो कहते हैं स्वल्पस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात, थोड़ा सा भी, ये धर्म से मतलब कर्मयोग, थोड़ा सा भी कर्मयोग करो महतो भयात, संसार के जन्म मरण से आप बच जाओगे। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है भगवान राम ब्रिज बना रहे थे, पुल बना रहे थे लंका जाने के लिए, सब बंदर लोग जो है वो पत्थर वत्थर ला के ब्रिज बनने का काम हो गया शुरू। तो वहां पर एक स्क्विरल थी, कितनी बड़ी स्क्विरल, छोटी सी, तो वो भी सहायता कर रही थी, क्या करती थी, समुद्र में जाके डुबकी लगाए, फिर बालू में आके ऐसे ऐसे उलट पुलट हो जाए, उसके शरीर में थोड़ा सा बालू लग जाए, जहां कंस्ट्रक्शन हो रहा था वहां जाकर बालू झाड़ दे। तो भगवान ने देखा ये भी तो काम कर रही है, तो भगवान को इतनी दया आई उसके ऊपर, उसको हाथ में लिया, उसको पुचकारा। कहते हैं जिस स्क्विरल के ऊपर में वो धारियां होती है ना, आपके यहां तो दूसरी स्क्विरल है, कभी कभी वो छोटी वाली नजर आती है। तो देखो उसने कितना काम किया, भगवान की प्रसन्नता के लिए उसने किया, डुबकी लगाओ उसके बाद में थोड़ा सा सैंड लो वहां जाके छोड़ दो। तो भगवान ने उसकी काम कितना स्वल्पस्य, कितना सैंड लेके गई होगी वो, उसको भी भगवान ने एक्सेप्ट किया करके उसको दुलारा। बहुत अच्छा। देखो एम्प्लॉई एंड वॉलंटियर के अंदर आपको डिफरेंस बताते हैं। एम्प्लॉई जब तक पूरा काम नहीं करता हम उसको वेतन नहीं देते हैं, वॉलंटियर जितना भी काम कर जाए हम खुश होते हैं। आश्रम में बहुत से रिटायर्ड लोग आते हैं, हम रिटायर्ड हो गए हैं, हम आपको 1 घंटा सर्विस देना चाहते हैं, हम लोग बोले जरूर आइए सर्विस कीजिए, करो भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। अच्छा फिर उनको इंस्पिरेशन मिलता है, आनंद मिलता है कि हमने कुछ किया, सेवा किया, फिर बोलते हैं नहीं हम तो और थोड़ा समय देंगे, चलो करो और काम करते हैं। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको बताते हैं, जहां पर भी प्रेम और भक्ति होती है ना वहां पर देखो एकदम बदल जाता है। अखंडानंद महाराज कहते हैं कि मान लो अगर आपके घर में एक नौकर है, नौकरी सैलरीड पर्सन, अब उसने आपने कहा हमारे गेस्ट हैं चाय बना खिलाओ, अब वो चाय बनाने गया, चाय लेके आया, कुछ कारण से उसके हाथ से प्याली छूट गई, टूट गई, आप गुस्सा हो जाओगे, गुस्सा होके इंडिया में होगा तो 2 थप्पड़ भी लगा देंगे, और कभी कभी तो बोलेंगे नहीं नहीं तुम्हारी तनख्वाह काटेंगे, प्याली इतने की है तुमने तोड़ दी, अब इतने रुपए तुम्हारी तनख्वाह से काटी जाएगी। वही काम आपका दोस्त आया है घर में, आप बोलेंगे चाय बना के लाते हैं, दोस्त बोले नहीं बैठो आज मैं बना के लाता हूं चाय। दोस्त चाय बनाने गया, चाय बनाई, उसके हाथ से प्याली गिरी, उसके हाथ से प्याली टूट गई, आप गुस्सा हो गए? क्यों नहीं हो गए? क्योंकि उसमें प्रेम है। देखा, छोटे से एग्जाम्पल, जहां प्रेम आ गया, जहां भगवान के ऊपर भक्ति आ गई, रिजल्ट एकदम बदली हो गया, एकदम बदल जाएगा। थोड़ा से में ही आनंद है, थोड़े से में करने से हो जाएगा। आप खाना खाने बैठते हो तो चटनी अचार कितनी लेते हो? खाना इतना होता प्लेट भरती, चटनी थोड़ा, मगर टेस्ट कितना आता है उसमें? आता ना मजा, थोड़ा सा खाया। तो ये कर्म योग भी थोड़ा सा करने से भी बहुत आनंद आपको आएगा। मैं तो बयात रहते संसार के जन्म मरण से आप छूट जाओगे। अच्छा, उसके बाद में क्या, फिर जन्म मरण होगा क्या? नहीं, फिर जन्म मरण नहीं होगा। अगर आपको भय है, भय, इस भय से अगर छूटना चाहते हो कि हमारा जन्म मरण नहीं होना चाहिए, तो आपको क्या करना होगा बताओ? क्या करना होगा? क्या दूसरा कोई उपाय है? कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। भगवान ने 1130 के अंदर में ज्ञान पूरा खत्म कर दिया, मगर अर्जुन बैठा रहा, हम लोग भी 1130 तक पढ़ लिए, मैं फिर आते रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अभी हम पूरे ज्ञान के अधिकारी नहीं हुए हैं। उसके अधिकारी बनने के लिए क्या करना होगा? कर्म योग करना होगा। तो आप अपने कर्तव्य कर्म करो, सेवा भाव से करो, भगवान को याद करके करो, यही करना है। कर्तव्य कर्म से आपको छुट्टी नहीं है, छुटकारा नहीं है, कर्तव्य कर्म करने होंगे। किस भाव से करने होंगे? सेवा भाव से करने हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करने हैं, बस इतना ही जोड़ना है, यही कर्मयोग है। और इसी से आपका मन शुद्धि होगा। भगवान जो है कनेक्शन देखते हैं, आपकी कैपेबिलिटी और रिजल्ट नहीं देखते हैं। वेदर यू आर कनेक्टेड टू लॉर्ड और नॉट, ही विल सी ओनली दिस मच, केवल आपकी भावना, केवल आपकी भक्ति लेंगे, और कुछ नहीं वो करेंगे। कर्मियों का फल तुरंत मन शुद्ध, इमीडिएटली। जितना जितना आप करते जाएंगे, उतना उतना आपका फल, मन शुद्ध हो जाएगा। कर्मयोग का फल कभी भी पाप नहीं होता, पाप नहीं होगा कभी, गलत कभी नहीं होगा। आपने अगर 1% भी किया, सक्सेसफुल भी हुए, तब भी आपका फल अच्छा, मन शुद्ध होगा। कर्मयोग करते हुए अगर आप फेल भी कर गए, फिर भी आपका मन शुद्ध होगा। देखो इतनी बड़ी चीज है इसके अंदर में, कर्म योग अगर आप करते जाओगे तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। स्टेप्स अगर डिफेक्टिव भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान आपके स्टेप्स देखने वाले नहीं है। भगवान को फल से कुछ नहीं लेना देना है, न कर्म से लेना देना है, भगवान को केवल आपके भाव से लेना देना है। अगर स्वल्पस्य करने से इतना लाभ हो सकता है, तो पूरा अगर हम करें तो कितना लाभ होगा सोचो। भगवान कहते थोड़ा सा करो, फिर भी जन्म मरण के चक्कर से बच जाओगे। अगर पूरी जिंदगी के कर्तव्य कर्म ही हम ऐसे करने शुरू कर दें, तो कितना लाभ होगा। इसलिए हमको कर्तव्य कर्म करने हैं निसंग होके। नंबर वन, समता रहते हुए कर्म करने के पहले समता बनानी होगी, बाद में समता बनाने से नहीं होगा। और तीसरा, ईश्वर अर्पण करके करना है, ईश्वर की खुशी के लिए करना है। काम में कर्म जब तक कंप्लीट नहीं होता है, तब तक फल नहीं होगा। कर्म योग के अंदर फल कंप्लीट हो, फल मिलेगा आपको, इतना फायदा है। और जितने भी रिचुअल्स हैं, कर्मकांड हैं, उन सब में प्रत्यवाय है। अगर आपने गलत किया है, आपको भोगना पड़ेगा। अब भगवान जो है ग्लोरी ऑफ कर्मयोग फ्रॉम माइंड लेवल, मन के लेवल से कैसे ये काम करता है ये है। तो हम इसका केवल पाठ कर लेते हैं, थोड़ा सा मीनिंग देख लेते हैं, मगर इसका डिटेल हम लोग अगले दिन देखेंगे।
व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन, एकेह कुरु नंदन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनां, बुद्धयो व्यवसायिनां व्यवसायात्मिका बुद्धिः एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च
व्यवसायत्मिका। व्यवसायत्मिका मतलब आप ये नहीं समझ लेना कि जिसका बिजनेस में बहुत ज्यादा माइंड हो, नो नो नो। व्यवसायत्मिका का मतलब होगा कि जिसकी सिंगल पॉइंटेड बुद्धि है। और ये बुद्धि कैसी है, ये साधारण अंतःकरण की बात हो रही है। एक मतलब सिंगल पॉइंटेड, यह मतलब कर्मयोग। कर्मयोग में जिसकी बुद्धि ने भगवान को पकड़ लिया है, भगवान के प्रसन्नता के लिए हम कर्म कर रहे हैं, उसकी बुद्धि एक सिंगल पॉइंटेड हो गई। कुरु नंदना, ओ जॉय ऑफ कुरु वंश। बहुशाखायी अनंताश्च बुद्धो अव्यवसायी नाम, जिसने भगवान को नहीं पकड़ा, जिसने भगवान को पकड़ लिया उसकी व्यवसायत्मिका बुद्धि हो गई, सिंगल पॉइंटेड बुद्धि हो गई। और जिसने भगवान को नहीं पकड़ा वो क्या हुआ, अव्यवसायी। एक है व्यवसायत्मिका बुद्धि सिंगल पॉइंटेड, अगर आपने हायर आइडियल को पकड़ लिया सिंगल पॉइंटेड हो गए, हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अब व्यवसायत्मिका आपने उसको नहीं पकड़ा, संसार को पकड़ा है, तो आपकी बुद्धि बहुशाखा अनंत। हमारी बुद्धि सब बहुशाखा है क्योंकि हमने उसको नहीं पकड़ा है। बहुशाखाई अनंताश्च बुद्धो अव्यवसायी नाम, उनका क्या हाल होता है भगवान उसके बाद में बताएंगे, और सब डिटेल में बताएंगे। जिनकी बहुशाखा बुद्धि होती है, जो भगवान को नहीं पकड़ते, उनका क्या हाल होता है भगवान बताएंगे, उसको हम बाद में देखेंगे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्